मॉम, आप पैनिक हो जाती हैं, बोलने से पहले सोचती भी नहीं, अरमान ने गुस्से में कहा। वो साफ तौर पर परेशान था। इस वजह से उसकी और नूर की लड़ाई हो चुकी थी और नूर उससे नाराज थी। आज यूनिवर्सिटी भी वो उसके साथ नहीं गई थी और आई भी नहीं थी उसके साथ। मैं पैनिक हो जाती हूँ, जुबैदा बेगम ने भी गुस्से में जवाब दिया। जुबैदा के दोनों बच्चे ही उसके आगे बोलते थे। हाँ मॉम, उस दिन आपने नूर पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने मुझे जहर देने की कोशिश की, और अब आप फैज़ान पर 3 लाख की चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हैं। आप एक बार भी नहीं सोचती कि आप क्या कह रही हैं, फिर इतना बड़ा हंगामा हो जाता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। अरमान की बातों में गुस्सा भी था और सच भी। जुबैदा बेगम उसकी बातें सुनकर और भड़क गईं, बिना कुछ कहे ही गुस्से में बाहर चली गईं। लेकिन सच यही था, जुबैदा बेगम का यही स्वभाव था, पहले कुछ भी कह देना और फिर बात इतनी पड़ जाना कि संभालना मुश्किल हो जाए। नूर अपने कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही थी। उसके सेमेस्टर शुरू हो चुके थे और पहला एग्ज़ाम वैसा नहीं गया था जैसा वो चाहती थी। इसी वजह से वो अगले इम्तिहान के लिए और ज़्यादा मेहनत कर रही थी। तभी उसके फ़ोन पर उसकी अम्मी का कॉल आया। तुम्हारे एग्ज़ाम कैसे चल रहे हैं, अच्छे तो है ना, उसकी अम्मी ने पूछा। अरे कैसी बातें कर रही हो, नूर कुछ कहते उससे पहले ही पास बैठे उसके अब्बा बोल पड़े। मेरी बेटी के एग्ज़ाम कभी ख़राब हो सकते हैं क्या, पता है ना मेरी बेटी कितनी ज़हीन है। अपने अब्बा की बात सुनकर नूर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, जी मेरे एग्ज़ाम अच्छे ही जा रहे हैं, आप अपना ख्याल रखती हैं ना अम्मी, नूर ने पहली बार इस तरह अपनी अम्मी से पूछा। क्या बात है, आज अब्बा की जगह अम्मी की फ़िक्र की जा रही है, वरना तुम्हें तो हमेशा अपने अब्बा की ही चिंता रहती है, सुल्ताना बेगम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बात सच भी थी, नूर अपने अब्बा इकबाल के ज़्यादा करीब थी। उसकी अम्मी दुनियादारी में ज़्यादा उलझी रहती थीं, लेकिन उन्होंने कभी भी नूर को किसी बात के लिए रोका नहीं था। सही हो या गलत, हर बार उसका साथ दिया था। नूर ही उनकी पूरी दुनिया थी। ऐसा नहीं है अम्मी, मुझे हमेशा से आपकी भी फ़िक्र रही है, बस आज पूछ लिया, नूर ने नरमी से कहा। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना, उसके अब्बा ने उसकी आवाज़ में हल्की सी गंभीरता महसूस करते हुए पूछा। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, नूर ने तुरंत बात संभाली। दरअसल तुम्हारे अब्बा को तुम्हारी ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं है, इसलिए पूछ रहे हैं, उसकी अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। नूर कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर बोली, ज़रूरी तो नहीं कि इंसान को समझ तभी आए जब उसके साथ कुछ हो, कभी कभी दूसरों को देखकर भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। उसे फैज़ान याद आ गया, जिसके पास ना अम्मी थी ना अब्बा, और फिर भी वो कितनी मुश्किलों से गुजर रहा था। उसे अचानक अपनी अम्मी की बहुत याद आने लगी। दूसरों की फ़िक्र छोड़ो और अपनी एग्ज़ाम पर ध्यान दो, उसकी अम्मी ने उसे हल्के से टोकते हुए कहा। नूर मुस्कुरा दी। तभी उसके फ़ोन पर दूसरी कॉल आने लगी, अरमान कॉलिंग। नूर का फ़ोन लगातार बिजी आ रहा था। अरमान बार बार कॉल कर रहा था और हर बार कॉल कट जा रही थी। इस वक्त किससे बात कर रही है, अरमान ने छत पर टहलते हुए खुद से कहा। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उधर नूर अपने कमरे में थी। उसका मूड पहले से ही खराब था, इसलिए उसने फ़ोन काटा नहीं था। फ़ोन स्पीकर पर था और वो अपने अम्मी अब्बा से बात कर रही थी। नूर, कल तुम्हारा एग्ज़ाम है, अब फ़ोन रखो और पढ़ाई करो, उसकी अम्मी ने समझाया। तभी उसके अब्बा हंसते हुए बोले, तुम अपनी बेटी को अच्छे से जानती हो कि वो कमरा बंद करके पढ़ती रहती है। उनकी बात सुनकर नूर हल्का सा मुस्कुरा दी, क्योंकि सच्चाई तो यही थी कि उसका ध्यान कहीं और ही था। इधर अरमान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन नूर फ़ोन उठा ही नहीं रही थी। कौन है जिससे इतनी देर बात कर रही है, वो सोचते हुए और ज़्यादा परेशान हो गया। उसी घर में एक और खेल चल रहा था। रेहान चुपचाप अपने कमरे में आया। उसके हाथ में वही उस डिज़ाइन के झुमके जो कुछ दिन पहले गुम हो गए थे और जिनकी चोरी का इल्ज़ाम फैज़ान पर लगा था। रेहान ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से झुककर वो झुमके बेड के नीचे फेंक दिए। अब जब ये मिलेंगे तो फैज़ान बेगुनाह साबित हो जाएगा, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सोचा। लेकिन उसके इरादे साफ नहीं थे, और इसी बहाने नूर और मैं और करीब आ जाएंगे, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उधर फैज़ान उसी रात घर छोड़कर चला गया था। वो ट्रेन में बैठ चुका था मसूरी के लिए। करीब 30 से 36 घंटे का सफ़र, और वहाँ से उसकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी। उसे नहीं पता था कि उसके पीछे क्या क्या बदलने वाला है। अगली सुबह का वक्त था। फरीद खान और रेहाना बेगम साथ बैठकर चाय पी रहे थे। फैज़ान की बहुत फिक्र हो रही है, अच्छा नहीं हुआ वो ऐसे चला गया, रेहाना बेगम ने हल्की चिंता के साथ कहा। कोई बात नहीं, अपने आप वापस आ जाएगा, फरीद खान ने बेपरवाही से जवाब दिया। उन्हें यकीन था जब हालात मुश्किल होंगे तो फैज़ान खुद लौट आएगा। फिर उन्होंने चाय का घूंट लिया और कहा, तुम अपने बेटे की फिक्र करो, कितना बड़ा नुकसान हो गया है, कल इतनी अहम मीटिंग थी और वो उसमें आया ही नहीं। फरीद खान की आवाज़ में नाराज़गी साफ थी। एक मीटिंग क्या अटेंड नहीं की, आप तो बात का बतंगड़ बना रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं मेरा रेहान कैसा है, कोई वजह रही होगी, वरना वो मीटिंग छोड़ने वालों में से नहीं है, रेहाना बेगम ने पूरे यकीन के साथ कहा। उन्हें क्या पता था, उनका यही यकीन एक दिन टूटने वाला है। मैं अभी निकल रहा हूँ, फिर बात करेंगे, फरीद खान उठते हुए बोले और वहां से चले गए। तभी अरमान वहां आया। अरे आज तुम इतनी जल्दी उठ गए, रेहाना बेगम ने पूछा। जब रात को इंसान चैन से सोए तो सुबह जल्दी उठना ही है, मैं तो सारी रात किसी के साथ फोन पर नहीं लगा रहता, अरमान ने हल्की तंज भरी नजर नूर की तरफ डालते हुए कहा। नूर समझ गई ये बात उसी के लिए थी जो फरीद खान के जाने के बाद बाहर रेहाना बेगम के पास आकर बैठ गई थी, क्योंकि रात भर अरमान उसे कॉल करता रहा था और उसका फोन बिजी था। उसे क्या पता था कि नूर अपने अम्मी अब्बा से बात कर रही थी। तभी रेहान भी वहां आ गया, उसके हाथ में कॉफी का कप था। कहां बिजी रहते हो आजकल, उसने मुस्कुराते हुए अरमान से पूछा। नूर ने हैरानी से अरमान की तरफ देखा, जैसे उसे समझ आ गया हो कि ये ताना उसी पर है। तभी कामवाली वहां आई। नूर बीबी ये चैन आपकी है ना, उसने हाथ में एक चैन पकड़ रखी थी। हाँ मेरी है, नूर ने चैन लेते हुए कहा। ये तुम्हें कहाँ मिली, अरमान ने पूछा। ताई अम्मी के कमरे में, उस दिन तुम वहां सोई थी ना, शायद वहीं गिर गई होगी, कामवाली ने जवाब दिया। नूर ने चैन ले ली। जहां जहां जाती हो अपनी निशानी छोड़ाती हो, अरमान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। फिर थोड़ा झुककर बोला, कोई कीमती चीज मत गिरा देना, खासकर वो जो किसी ने तुम्हें प्यार से दी हो, उसकी कदर करनी चाहिए। उसका इशारा साफ था, वो चांदी की पायल जो उसने नूर को गिफ्ट की थी। रेहान चुपचाप बैठा ये सब देख रहा था। उसकी नजर धीरे से नूर के पैरों पर गई, वहां वही चांदी की पायल थी। उसे समझने में देर नहीं लगी ये अरमान का दिया हुआ गिफ्ट है। उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ बदल गया। नूर को अरमान की बातों पर गुस्सा आ गया था, उसने कुछ नहीं कहा, बस उठकर वहां से जाने लगी। जाते जाते वो रेहान के पास से गुजरी, उसका दुपट्टा हल्के से रेहान के हाथ को छू गया और उसी पल नूर की खुशबू जैसे रेहान के अंदर तक उतर गई। वो कुछ सेकंड के लिए वहीं ठहर गया, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे कुछ मिल गया हो। बाकी सब लोग अपनी बातों में मशगूल थे, किसी ने उसके चेहरे का वो बदलता रंग नहीं देखा।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना और रेटिंग देना याद रखें। आपके कमेंट हमें लिखने का हौसला देते हैं।